जैसे ही नंदिनी ने ये बात कही, उदय उसकी तरफ देखकर बोला, आज है क्या ईशु के पगफेरे का दिन? नंदिनी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, नहीं, अभी तक तो कन्फर्म नहीं हुआ है कि कब आ रही है ईशु, पर तैयारी तो हमें पहले से ही करनी पड़ेगी ना। वैसे भी शादी के बाद ये पहली बार है जब ईशु यहाँ आएगी। शादी के बाद क्या, वो तो इतने दिनों बाद यहाँ आ रही है, तो मम्मी जी भी उनसे मिलकर किस तरह रिएक्ट करेंगी और वो उन्हें माफ़ करेंगी भी या नहीं। नंदिनी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, नहीं, अभी तक तो कन्फर्म नहीं हुआ है कि कब आ रही है ईशु, पर तैयारी तो हमें पहले से ही करनी पड़ेगी ना। वैसे भी शादी के बाद ये पहली बार है जब ईशु यहाँ आएगी। शादी के बाद क्या, वो तो इतने दिनों बाद यहाँ आ रही है, तो मम्मी जी भी उनसे मिलकर किस तरह रिएक्ट करेंगी और वो उन्हें माफ़ करेंगी भी या नहीं। उदय ने उसकी बात सुनकर उठकर बैठते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ईशु बहुत अच्छी है, वो किसी से भी ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाती, और वो तो फिर मम्मी है। इस बात की तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नंदिनी ने उदय की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया, और तभी नंदिनी ने वहीं बेड पर पड़ी उदय की शर्ट को उठाया, उसे पहनकर अपने बालों में क्लिप लगाते हुए बोली, मैं नहाने जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आप भी रेडी हो जाइएगा। इतना बोलकर नंदिनी बेड के पास बिखरे हुए अपने और उदय के बाकी कपड़ों को उठाने लगी। उदय नंदिनी को अपनी शर्ट में देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो शर्ट उसके घुटनों से ऊपर थी और उसमें नंदिनी का फिगर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तभी उदय ने कहा, सुबह सुबह बिना मेकअप के भी कोई इतना अच्छा कैसे लग सकता है? इतना बोलकर उदय ने नंदिनी की गर्दन पर किस किया। नंदिनी उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल लग सकता है, अगर उसका इतना प्यारा हस्बैंड हो और उसे इतना प्यार करता हो तो लग सकता है। इतना बोलकर वो उदय की तरफ देखकर मुस्कुराई और उदय ने उसके गाल पर किस किया। वो धीरे धीरे उसकी गर्दन पर किस करने लगा। नंदिनी ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप उदय, छोड़िए, हमें नहाने जाना है और आप बेकार में हमारा टाइम वेस्ट मत करिए। उदय ने जैसे ही नंदिनी की बात सुनी, उदय ने उसकी कमर में अपना हाथ डाला और उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, ये टाइम वेस्ट थोड़े ही है। उदय बोल ही रहा था कि नंदिनी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और उसे खुद से दूर करते हुए कहा, जो भी है अभी कुछ नहीं करने वाली मैं, और वैसे भी कल रात आपने बहुत परेशान किया मुझे, अब छोड़िए। इतना बोलकर नंदिनी ने अपनी कमर पर से उदय का हाथ हटाया और वॉशरूम की तरफ चली गई। उदय नंदिनी को इस तरह भागते देखकर मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु और इप्सिता दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे, क्योंकि कल की रात उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थी। दोनों पहली बार एक दूसरे के इतने ज़्यादा नज़दीक थे। रात में दोनों में से किसी को भी जल्दी नींद नहीं आई थी। सोते सोते उन दोनों को ही लगभग सुबह हो गई थी। अभी सुबह के 9 बज रहे थे और दोनों में से किसी की भी आँख नहीं खुली थी। तभी अभिमन्यु के फ़ोन पर मैसेज नोटिफिकेशन रिंग हुआ, जिसकी आवाज़ सुनते ही अभिमन्यु की आँख खुली। उसने अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें समर्थ का मैसेज था, गुड मॉर्निंग, कैसी थी तुम्हारी फर्स्ट नाइट, रूम से बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करनी है। समर्थ का मैसेज देखते ही अभिमन्यु ने फ़ोन साइड में रख दिया और वो इप्सिता की तरफ देखने लगा। इप्सिता का हाथ उसके पेट पर था और वो अभिमन्यु के सीने पर सिर रखकर लेटी हुई थी। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता को देखा, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आई और उसने इप्सिता के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को हटाया। वो उसके बिल्कुल नज़दीक जाकर उसके माथे पर किस करते हुए धीमी आवाज़ में बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनी, लेकिन वो हल्का सा मुस्कुराकर दोबारा इस तरह लेट गई। अभिमन्यु ने इप्सिता के चेहरे को देखा और उसकी आंखों के नज़दीक जाकर उसकी आंखों पर किस करने लगा। इप्सिता ने अपनी भौहें उठाई और अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा। अभिमन्यु ने इप्सिता के कंधे पर अपना हाथ रखा और हल्के से उसके कंधे को रगड़ते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। इप्सिता ने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे गुड मॉर्निंग कहा और उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर लीं। अभिमन्यु ने इप्सिता को इस तरह आंखें बंद करते हुए देखकर पूछा, क्या बात है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई क्या? इप्सिता ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, नींद भी पूरी नहीं हुई है और मेरी पूरी बॉडी दर्द हो रही है। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता की बात सुनी, उसे इप्सिता पर बड़ा प्यार आने लगा और उसने इप्सिता को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, आई नो, कल रात की वजह से सॉरी, हमने आपको कुछ ज्यादा ही दर्द दिया। इप्सिता ने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ। अभिमन्यु ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसने इप्सिता के बिल्कुल करीब आकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो बताइए, हम मेडिसिन दे देते हैं। इप्सिता ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस हमें थोड़ी देर और सोना है, क्या हम थोड़ी देर और सो सकते हैं? अभिमन्यु इप्सिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ऑफकोर्स, आप जितनी देर तक चाहें आराम कर सकती हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आफ्टर ऑल अब आप इस राजमहल की रानी साजो हैं। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर खुश होकर कहा,
तो फिर ठीक है, हम थोड़ी देर और सोएंगे। इतना बोलकर उसने अभिमन्यु की कमर पर अपना हाथ कस दिया और वो अपनी आंखें बंद करके लेट गई। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और उसने अपना हाथ इप्सिता के सर पर रखा और बड़े प्यार से उसके सर को सहलाने लगा। इप्सिता की आंखें बंद थीं और अभिमन्यु एकटक बस उसके चेहरे की तरफ ही देखता जा रहा था। अभिमन्यु को इप्सिता पर बड़ा प्यार आ रहा था और जिस तरह से इप्सिता ने ये बात बोली कि उसकी बॉडी में दर्द हो रहा है, तो अभिमन्यु उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर समझ रहा था कि इप्सिता काफी ज्यादा पेन में है। अभिमन्यु आराम से इप्सिता को अपनी बाहों में भरकर लेटा हुआ था और उन दोनों को इस तरह लेटे हुए एक घंटा बीत गया। तभी अभिमन्यु के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। अभिमन्यु ने जैसे ही खटखटाने की आवाज सुनी, उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए पूछा, कौन है? बाहर से अर्पिता की आवाज आई, भाई साहब उठिए, हम हैं और हम आपको ही बताने आए हैं कि मासा ने कहा है कि आप दोनों जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाइए। भाभी सा की मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है, सारे मेहमान भाभी सा से मिलने के लिए बैठे हैं। अर्पिता इतना बोलकर वहां से चली गई और इप्सिता ने भी अर्पिता की बात सुनी। वो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, मुंह दिखाई की रस्म आज? इप्सिता काफी ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि उसका बेड से उठने का मन नहीं कर रहा था और जब अर्पिता ये बात बोलकर गई तो इप्सिता का चेहरा उतर गया। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात नोटिस की, वो उसकी तरफ देखकर उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इप्सिता, वैसे भी मुंह दिखाई की रस्म इतनी जरूरी नहीं है और अगर जरूरी है भी तो हम उसे डिले करवा देंगे। हम आपकी मुंह दिखाई कल के लिए मासा से बोल देते हैं, आप आराम से रेस्ट करिए। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता के माथे को चूमा और वो बेड से उठकर खड़ा हो गया। इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी, वो अपने मन में बोली, नहीं, अगर अभिमन्यु ने आज फिर हमारे लिए जाकर मासा से बात की तो मासा को फिर से बात कहीं बुरी ना लग जाए। हम नहीं चाहते कि अभिमन्यु और मासा के बीच की ये बात और भी ज्यादा बढ़े, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अभिमन्यु बेड से उठा ही था कि इप्सिता ने अपने ब्लैंकेट को पकड़ा और वो अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं रुकिए, अभिमन्यु कहाँ जा रहे हैं आप? अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, मासा से बात करने।
अभिमन्यु की बात सुनते ही इप्सिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, आपको मासा से कोई बात करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी अब हम बेटर फील कर रहे हैं, हम ये मुंह दिखाई की रस्म आज ही करना चाहते हैं। इप्सिता की ये बात सुनकर अभिमन्यु ने अपनी भवे से कोरते हुए कहा, लेकिन आप तो बोल रही थीं कि आपकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, तो फिर? इप्सिता ने कहा, नहीं, अब हम ठीक फील कर रहे हैं, आप प्लीज मासा से इस बारे में कोई बात मत करिएगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर आप मासा से इस बारे में कुछ भी बात करेंगे, सोचिए क्या सोचेंगी वो। अभिमन्यु इप्सिता की ये बात सुनकर उसके बगल में आकर बैठा और उसने इप्सिता के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, कैसी बात कर रही हैं आप, वैसे भी मासा को खुद सोचना चाहिए कि कल हमारी फर्स्ट नाइट थी तो हमें एक दिन तो रेस्ट करने के लिए मिलना चाहिए ना। चलिए हमारा ठीक है, लेकिन आप तो लड़की हैं, मासा को आपके बारे में तो सोचना चाहिए था ना। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम मासा से बात कर लेंगे और आपको भी इतना ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि इप्सिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम ठीक हैं, हमें अब दर्द नहीं हो रहा, आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर इप्सिता ने बैठकर चारों तरफ देखा, उसे अपने कपड़े नहीं दिख रहे थे और इप्सिता ने इस ब्लैंकेट को अपनी बॉडी के चारों तरफ लपेटा और वो बेड से उतरकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। ब्लैंकेट लपेटने की वजह से इप्सिता ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसलिए अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराया और वो इप्सिता के करीब आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, अगर आप इतनी जिद कर रही हैं तो चलिए हम ही आपकी हेल्प कर देते हैं।